Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस कान की ओर से आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। आज सायंकाल के सत्संग में और धन्यवाद करते हैं कृष्ण जगु जी और परिवार का, जिन्होंने अपने निवास स्थान के ऊपर आज सत्संग का आयोजन किया है। भक्ति प्रभुपाद जी ने एक जगह कहा है कि आम पका हुआ हो या कच्चा हो, आम सब फलों का राजा है। ऐसे ही भक्ति सब मार्गों का राजा है। जैसे फल सब फलों का राजा आम है, ऐसे भक्ति सब साधनों का राजा है। और भक्ति के ऊपर विशेष शास्त्र नारद भक्ति सूत्र है और भगवत गीता भक्ति योग का विशेष रूप से शास्त्र है। नारद शब्द का अर्थ है, नारद किसका बेटा है? ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र है, उसकी माता नहीं है। मन से हृदय से उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा जी के, और नारद भक्ति का आचार्य है। तो नारद जी को एक तो ज्ञान ब्रह्मा जी से मिला, और भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद को चार श्लोकों में भागवत सुनाकर और फिर कहा कि बेटा इसका विस्तार करो और इसका प्रचार करो। तो ये नारद को ब्रह्मा जी का आदेश है, पिता का, गुरु का, कि इस भागवत रूपी प्राण का प्रचार करो और विस्तार करो। और नारद का दूसरा गुरु है नर नारायण, जो बद्री का आश्रम में भगवान नर नारायण विराजते हैं, उनका पूजा नारद जी करते हैं। तो जो नर से प्राप्त ज्ञान, नर नारायण से प्राप्त ज्ञान को जनता में प्रचार करे उसका नाम है नारद। जो नर नारायण, तो नर नारायण ने नारद को भगवान की प्राप्ति का सरल मार्ग भक्ति बताया, वो प्रचार करे वो नारद। एक दूसरा अर्थ नारद का है, जीव के हृदय में जो अज्ञान है उसको नार कहते हैं, उसको जो साफ करके उजला कर दे, उसको खत्म कर दे, उसको नारद कहते हैं। जो नारद से मिलेगा उसको नारद भगवान का दर्शन कराएगा, चाहे वो 5 वर्ष का दैत्य बच्चा जन्म से पहले प्रहलाद हो, चाहे स्वयंभू मनु का पौत्र ध्रुव महाराज हो, चाहे डाकू वाल्मीकि रत्नाकर हो, चाहे कोई महान पंडित हो, अगर नारद से मिलेगा तो भगवान का दर्शन करेगा। ये नारद की विशेषता है। एक तरफ वाल्मीकि रत्नाकर डाकू है और एक तरफ व्यास देव भगवान का अवतार है, दोनों के ऊपर नारद की समान कृपा है। एक रामायण का महाकवि हुआ, एक भागवत के आचार्य है व्यास देव। और तीसरा नारद का अर्थ है, सबके हृदय में नराकार, नराकार मतलब नर का मतलब पुरुष, श्याम सुंदर जो गोविंद बांके बिहारी बंसीधर मुरलीधर जो सबके हृदय में बैठा है, उसको मिला दे वो नारद। नराकार भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है उससे मिला दे वो नारद। तो ये नारद भक्ति के आचार्य हैं और उन्होंने भक्ति देवी को वचन दिया है। भक्ति देवी को नारद ने वचन ये दिया है कि कलयुग के समान और कोई महान युग नहीं है। इस कलयुग में, कलयुग का क्या अर्थ है, एक कलह, कलह का मतलब झगड़ा, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा हो, ये कलयुग का रूप है। घर घर के अंदर झगड़ा है, देश देश के बीच में झगड़ा है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, ये कलयुग की पहचान है। लेकिन एक और भी सुंदर अर्थ है कलयुग का, कली केशव, क केशव, लयते जो लाके दे दे, मिला दे, केशव से मिला दे, वो कलयुग। कलयुग में भगवान कृष्ण से भक्ति और प्रेम के द्वारा मिलना सरल है, इसलिए नारद कहते हैं कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें भगवान आसानी से मिल जाते हैं, सरलता से मिलते हैं। और फिर नारद जी कहते हैं, हे भक्ति माता, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैं घर घर में, जन जन में, एक एक घर घर तक आपको मैं, जन जन का मतलब हे हर एक आदमी के हृदय में मैं आपको स्थापित करूंगा। ये भक्ति को नारद ने वचन दिया। आपको भागवत के महात्म में ये कथा आती है कि भक्ति अपने दो बच्चों को लेकर, भक्ति के दो बच्चे क्या हैं अथवा भक्ति का फल क्या है, फल और बच्चा एक ही बात होती है, बेटा या फल, किसी चीज का फल का मतलब रिजल्ट, वो समान होता है। तो भक्ति का फल क्या है, ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य सहित भागवत का श्लोक है, भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आएगा। ज्ञान का मतलब भगवान का ज्ञान, कृष्ण संबंधी ज्ञान, और वैराग्य का मतलब विशेष कृष्ण में प्रेम और संसार से वैराग्य, ये भक्ति के साथ अपने आप आएगा। तो भक्ति के दो बेटे तो बूढ़े हो गए, लेकिन भक्ति जवान, और ये वृंदावन में, भक्ति तो वृंदावन में जवान हो गई, लेकिन दोनों बेटे बूढ़े थे। तो उनको नारद ने वचन दिया था कि मां तेरे बेटों को तो जवान करूंगा, हाथ से हिलाया दोनों बच्चों को जगाया, नहीं जगे, कर्म से ज्ञान और वैराग्य नहीं आएगा। फिर कान में वेदों के मंत्र पढ़े, ज्ञान से जगाने का प्रयास किया, नहीं जगे, तो ज्ञान से भी वैराग्य और ज्ञान भगवान का नहीं आएगा, नहीं जागेगा। तब प्रेम भक्ति भागवत के द्वारा दोनों का वापस नौजवान हो गए दोनों बच्चे। तो हमारे जीवन में ज्ञान वैराग आना है तो उसके लिए भक्ति का पहले आना आवश्यक है, जरूरी है। तो भक्ति की परिभाषा क्या है, भक्ति का अर्थ है प्रेममयी सेवा। वैसे भक्ति माँ है, हम तो रोज प्रेम ध्वनि में क्या कहते हैं, भक्ति देवी की जय। तो भक्ति देवी है, भक्ति बहुत सुंदर। क्या आभूषण भक्ति पहनती है, कौन से कानों में क्या डालती है, गले में क्या डालती है, भक्ति को सुंदर कौन बनाता है, दिखता है, लिखा है शास्त्र में, भक्त भक्ति के आभूषण है। जो भक्त होते हैं वही भक्ति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इसलिए भक्ति बढ़ने का अर्थ है भक्त बढ़ना। तो घर घर के अंदर इस भक्ति को पहुंचाना है, ये कार्य भक्ति ने एक जगह नारद को कहा था भागवत के महात्म्य पद्म पुराण में, अगर भारतवर्ष के लोग मेरा आदर सम्मान नहीं करेंगे तो मैं समुन्द्र पार चली जाऊंगी। नारद को भक्ति ने कहा था कि अगर भारतवर्ष के लोग मेरा सम्मान नहीं करेंगे, मेरा आदर नहीं करेंगे, मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं समुन्द्र पार चली जाऊंगी। कुछ विद्वानों ने प्रभुपाद जी के 100 साल जन्म के उत्सव में अनुभव बताते हुए कहा कि भक्ति जो कहा था नारद को, भारतवासियों ने उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रभुपाद के हृदय में बैठकर भक्ति समुन्द्र पार चली गई। प्रभुपाद के साथ भक्ति समुद्र, ये भक्ति महात्म्य का श्लोक है और बहुत वरिष्ठ और बहुत सीनियर और बहुत गूढ़ धर्म को जानने वाले कुछ महात्माओं ने ये अपना अनुभव बताया कि निश्चित रूप से भक्ति भारत से प्रभुपाद जी के हृदय में बैठकर और समुद्र पार चली गई और वहां से इस भक्ति का प्रचार पुनः स्थापित हुआ। और नारद जी के इस परंपरा में, प्रभुपाद जी कहते हैं हम नारद की परंपरा में हैं, और नारद का कीर्तन नृत्य गाने वाला कीर्तन है और नारद गली गली में घर घर में जाकर गाता है। तो इस नारद की भक्ति सूत्र के अनुसार भगवान, भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रेम, परम प्रेम। भक्ति प्रेममयी होती है, भक्ति ऐसी माँ है, भक्ति का स्वरूप ऐसा है कि भगवान को जानने के लिए आपको ब्राह्मण होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, सन्यासी होना चाहिए ये जरूरी नहीं है। भक्ति तो ये नहीं देखती है कि आप कौन हो, ये भी नहीं देखते हैं कि आपके अंदर कितना कचरा पड़ा है, कितने गंदगी पड़ी है, कितना बुराई पड़ी है, ये नहीं देखती है भक्ति। जैसे माँ बच्चे को, बच्चा रोता है तब दूध नहीं पिलाती है, बच्चे की आंख बंद होती है, बच्चा अभी जानता भी नहीं है दूध कहाँ है, तब भी माँ जबरदस्ती उठा के अपना स्तन मुख में देती है और दूध पिलाती है। और बच्चा कचरे में पड़ा हो, गंध में पड़ा हो, मलमूत्र में पड़ा हो, तो माँ ये नहीं कहती है तुम साफ होके आओ तो फिर मैं तेरे को गोद में लूंगी, उसको स्वयं साफ करती है, उसको चमकाती है और फिर पिताजी की गोद में देती है। ऐसे भक्ति किसी भी वर्ण से, किसी भी आश्रम से, किसी भी जाति से, कहीं से भी किसी को उठा के सुंदर बना के सत लक्षण प्रेम का देकर और भगवान की सेवा में अर्पण करती, ये भक्ति की मान्यता है। भक्ति कहीं से भी की जा सकती, किसी भी अवस्था में की जा सकती, कोई भी कर सकता। इसलिए विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा कि पाश्चात्य देश के लोग न तो ब्राह्मण थे, न तो वैदिक संस्कृति में उनका जन्म हुआ था, न ही वो कहा जाए तो आर्य संस्कृति को जानते भी थे, लेकिन इस भक्ति की शक्ति ये है कि उन लोगों को इस माँ भक्ति ने इतना सुंदर और इतना मधुर और इतना महान बना दिया कि वो आज विश्व भर में भ्रमण करके भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जिनका जन्म अमेरिका या यूरोप में हुआ है वो आज साधु के रूप में विश्व भर में मंदिर स्थापित कर रहे हैं, शास्त्रों का वितरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये भक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सामने देखने को मिलता है। जो भारत के अंदर बड़े बड़े साधु सन्यासी नहीं कर पाए, यहां तक के प्रभुपाद जी के अपने अनुभव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के गुरुदेव ने इंग्लैंड में सन्यासियों को भेजा था कि जाके प्रचार करो भक्ति का, और उनको भारत से पैसा भेजते थे ताकि आप किराया दो और रहो और खाओ पियो और प्रचार करो, और 2-3 साल के बाद सफलता नहीं मिली, निष्फल होकर वापस आए। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक दिन प्रवचन दे रहे थे और सब बड़े बड़े सन्यासी उनके शिष्य एक तरफ बैठे थे, एक तरफ और शिष्य ग्रस्त आदि बैठे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रवचन में एक तरफ जहां सन्यासी थे उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ देख के कहा, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेरा कोई शिष्य इस भक्ति आंदोलन को पूरे विश्व में स्थापित करेगा। और जहां वो देख रहे थे एक बैठा हुआ वहां व्यक्ति कहता है, मैंने देखा ये सन्यासियों की ओर देखकर तो नहीं कह रहे हैं, तो यही तो इनके बड़े सीनियर सन्यासी हैं जो कई सालों से सेवा कर रहे हैं, तो ये कहां देख रहे हैं। तो मुड़ के मैंने देखा तो उस जगह पे सफेद कपड़े पहने हुए अभय बाबू बैठे थे, प्रभुपाद जी उस कोने में बैठे थे, जिसको देखकर भक्ति सिद्धांत सत्संग ने कहा कोई मेरा शिष्य ये भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। और प्रभुपाद जी ने जहां सन्यासी भक्ति के प्रचार में इंग्लैंड में असफल हुए वहां ग्रस्तों को प्रचार के लिए भेजा, तीन ग्रस्त और नए नए ग्रस्त और ग्रस्त भी अमेरिकन ग्रस्त जिनको ग्रस्त का पता नहीं है कि ग्रस्त होता क्या है, वो तीन ग्रस्ती उनको इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए भेजा। और इन ग्रस्तियों ने यूरोप में इंग्लैंड में भक्ति का प्रचार किया। तो भक्ति ग्रस्ती कर सकता है और दूसरों को भी भक्त बना सकता है। तो ग्रस्तियों ने वहां सफलता प्राप्त की जहां सन्यासी असफल हो गए। ये भक्ति की ये विशेषता है कि आप जहां भी है, जिस अवस्था में है, बच्चे हैं तो प्रहलाद की तरह जन्म से पहले भी भक्ति सीख सकते हैं। अगर माताएं गर्भवती भागवत को सुनेंगी तो बच्चा भक्त पैदा होगा। ये बहुत सुंदर शिक्षा हमारी नवविवाहित कन्याओं को जो शादी करती हैं, दंपति में जाती हैं, उनको देनी चाहिए कि गर्भवती जब हो तब भागवत का श्रवण करना चाहिए। भगवान की भक्ति बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव होगा, अच्छे संस्कार का बालक पैदा होगा। नहीं तो टेलीविजन देख के भूतों को देखते देखते भूत पैदा करके संसार को दुखी मत करो। प्रायः टेलीविजन के ऊपर बैठी बेकार में माता इतने भूत पैदा कर दिए, परेशान हो गए हम। भक्त पैदा करो, भले एक नहीं 10 करो, लेकिन भक्त पैदा करो, भूत एक भी नहीं चाहिए। वैसे जब ब्रह्मा जी की आज्ञा नहीं मानी, चार कुमारों ने सृष्टि नहीं कही, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उनके उनके मस्तक से रुद्र नीचे गिरा और उसने कहा मैं क्या करूं, बोला प्रजा बढ़ाओ, और उसने भूत पैदा किए और भूत ऐसे कि सबको दुखी देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी सृष्टि बंद करो, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तो हमारे को जब ये लोग कहते हैं आजकल सब सरकारें कि बच्चे कम पैदा करो, तो हमको लगता है कि वैसे ही भूत पैदा करने से न पैदा करना अच्छा है। अच्छे पैदा करने हो तो 10 15 20 50 करो, कोई परेशानी नहीं है, और भूत पैदा करना है तो एक भी नहीं करो। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हमको ये ब्रह्मा जी का आदेश भागवत में दिखता है तो हमको समझ में आता है कि जब अयोग्य संतान हो तो उससे अच्छा है नहीं हो, और योग्य हो तो भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे। ऐसा ग्रस्त आचार्य हमारे परंपरा में है जिसके बच्चे 10 थे और सबको पालन पोषण करते हुए और भक्ति का इतना पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया, तो संभव है। तो भगवत गीता में भक्ति, भगवान ने तो सीधा कहा है भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, ये नहीं कहा है कि ज्ञानी बनो। कहा है ज्ञानी श्रेष्ठ है, मुझे प्रिय है, लेकिन कहा नहीं है कि ज्ञानी बनो, कहा नहीं है कि कर्मी बनो। हाँ, कर्म करना अच्छा है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, लेकिन बनो क्या, बोला भक्त बनो, भव मद भक्तो। बोला कैसे भक्त बने, मन मना, तुम मेरे को हमेशा याद रखो, मन में मुझे बिठा दो। आपके मन में कौन है अभी, आपके मन में इस वक्त क्या है, बोलो। हाँ, जरा अंदर जाके देखो कि क्या पड़ा है मन में, एक लिस्ट बनाओ कि मन में क्या क्या पड़ा है। रुपया है, पैसा है, घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, परिवार है, सब अंदर भरा हुआ है, पता है ना। लेकिन भगवान कहता है मुझे बिठाओ अंदर। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारे मन में बिठाओ, और हमने दुनिया को मन में बिठा रखा है। क्यों भाई, सच है कि झूठ है? भगवान को मन में बिठाने का क्या लाभ है? भगवान को मन में बिठाएंगे तो उसका लाभ क्या है? क्या लाभ है बोलो? हरे कृष्ण बोलो। भगवान को मन में बिठाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी और को मन में बिठाएंगे तो उसके पास जाएंगे। वैसे जो हमारे शत्रु होते हैं या जिससे हमारी एनिमिटी, दुश्मनी होती है ना, वो ज्यादा हमारे दिमाग के ऊपर छाए रहते हैं। वो हमारे दिमाग के ऊपर जगह बहुत ज्यादा वो दुश्मन ले लेते हैं। और जो हमारी दिल में प्रेम करने के लिए होना चाहिए, उनके लिए जगह बचती नहीं है। हम तो अपने दुश्मनों को सारा दिन याद करते हैं, जिनको नहीं चाहते हैं उनको याद करते हैं, जिसको चाहते हैं उनको याद नहीं करते हैं। उनको निकाल दो, क्यों कचरे को दिमाग में रखते? जो तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करते उसको दिल में क्यों रखते हो? जिसको देखना नहीं पसंद करते उसमें दिल में क्यों रखते हो? प्रायः हमारे दिल में कचरा ऐसा भरा हुआ है, उसको निकालो भगवान के। लेकिन निकलेगा कैसे कचरा? ये कचरा कैसे निकलेगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण के ऊपर अनादि काल से कचरा मैल जम गया है। हृदय तो दर्पण है, इसके ऊपर मैल जम गया है। कैसे साफ होगा? भगवान साफ करेगा, हम नहीं कर सकते। भगवान के भक्त बनेंगे तो भगवान धुनोति समलम कृष्ण, भगवान सारा मैल धो के साफ करेगा। इसलिए आपके तो मंदिरों में रोज प्रार्थना करने जाते हैं तो पहला एक वेद मंत्र क्या पढ़ते हैं? तुमेव, भगवान को पहले माता कहते हैं, पिता नहीं कहते। तुमेव माता कहते हैं, तुमेव माता च पिता बाद में कहते हैं। माता क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि हमारे अवगुणों को धो के साफ कर देती है, हमारे कचरे को भगवान धो के साफ करता है। और ये हरे कृष्ण मंत्र में हरे किसको संबोधन है? किसको संबोधन है? राधा कौन है? राधा है जगतेर माता, राधा जगत की माता है, और भगवान का मां का रूप राधा है। एक कृष्ण भगवान का पिता स्वरूप है और माता स्वरूप भगवान राधा के रूप में अपने आप को प्रणत करते, अपने आप को परिवर्तित करते। एक ही कृष्ण अपने आप से माता रूप में दया की सागर, करुणामयी, दयामयी राधा के रूप में प्रकट करते हैं, जो हमको कृष्ण की भक्ति और सेवा में लगा सकते हैं। और विशेष रूप से आप सब भाग्यशाली हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान, जो जिसका परिवर्तक अथवा जिसका आदि गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, जो राधा के भाव में आए हैं। राधा के भाव, हरे का अर्थ चैतन्य महाप्रभु भी है, क्योंकि वो राधा भाव में आए हैं और वही कृष्ण प्रेम देंगे। कृष्ण प्रेम चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु देंगे, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कितने भी संस्थाएं हैं, कितने ही मंदिर हैं, कितने ही मठ हैं, कितने ही प्रचार हो रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम जो भक्ति का स्वरूप है वो और कहीं से नहीं मिलेगा, और है ही नहीं कहीं। उनके पास ये, उनके दुकान पे ये सौदा है ही नहीं। किसी भी संप्रदाय, मंदिर, मठ, संस्था में कृष्ण प्रेम का सौदा है ही नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु के पास कृष्ण प्रेम है। और किसी चिरादादित्तम निजगुप्त वित्तम, जो चिरकाल से बहुत समय से नहीं दिया गया था धन अपना स्वप्रेम, कृष्ण प्रेम, वो तो चैतन्य महाप्रभु ने इस धरती के ऊपर दिया है। जो महाप्रभु चैतन्य को नहीं जानता है वो कृष्ण प्रेम को जान ही नहीं सकता है। इसलिए कई पंडित है, कई जन्मों से गीता भागवत पढ़ रहे हैं, रामायण कथा कर रहे हैं, लेकिन हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो यह संभव नहीं है, नहीं है संभव। और यहां बिल्कुल नए एक छह महीने का भक्त अगर मंदिर में आता है और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे और ऐसे करता है तो उसके अंदर इतने सदगुण एकदम आ जाते हैं, मानो मैं सदगुण ऐसे कहता हूं कि उसको उसके खान पान में एक दिन परिवर्तन एकदम परिवर्तन आ जाता है। वो फिर चाय तक पीना पसंद नहीं करता है। और बड़े बड़े पंडित वेदों को लिख लिख के इतनी मोटे चश्मे पहनते हैं लेकिन चाय पी के फिर लिखते हैं। मैं आपको बताता हूं कितना अंतर है। सारी भगवद गीता याद है, एक शब्द के 10 अर्थ बता देंगे, लेकिन चाय 3 टाइम चाहिए, सुबह दोपहर शाम। ये हम सच बता रहे हैं, साधु हो या सन्यासी सबको ये भाती, क्या चाय जो इससे बच जाए वो भाग्यशाली, ओम जय चाय की प्याली। पहले घरों में सुबह आरती होती थी, अब घरों में प्लेट और कप से ओम जय चाय की प्याली। तो ये एक प्रमाण है कि नया भक्त 6 महीने में ये सब नशा छोड़ सकता है, लेकिन 70 साल तक घंटी बजाने वाला चाय नहीं छोड़ सकता। मैं आपको लिख के देता हूं, ये प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही केवल भक्ति मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। खान पान में आपके आइलैंड पे कोई 100-200 पंडित तो होंगे ना, ओझा तो पता नहीं कितने हैं भूत निकालने वाले, वही तो भूत हैं, वही तो भूत हैं, भूत कहीं बाहर से नहीं आते, वही भूत है, वही भूत लगाते हैं, वही भूत निकालते हैं। एक आदमी था एक जगह, बहुत कीचड़ थी, जैसे बरसात होती है कहीं कीचड़, तो गाड़ी वहां फंस गई किसी की, तो एक आदमी अंदर से आया, गाड़ी को धक्का दिया, पानी में जाकर बोला आप मत उतरो, आप बैठे रहो, धक्का दिया, गाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो आदमी जो अंदर बैठा था उसने कहा बड़ी खुशी की बात है, आपने सहायता हमारी की, 100 रुपया इनाम। और मन में आया कि बेचारा देखो यहाँ रहता है कोई काम करता नहीं होगा, वो तो बड़ा सेठ था, उसने कहा तुमको मैं कोई नौकरी दे सकता हूँ, तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा काम क्या है, कुछ काम करते हो? उसने बोला यही काम करता हूँ, सुबह पहले मिट्टी डालता हूँ, फिर पानी डालता हूँ, इधर कीचड़ करता हूँ, फिर लोगों की गाड़ी फंसती है फिर निकालता हूँ, फिर 100 रुपया लेता हूँ, यही काम करता हूँ, यही मेरा धंधा है। तो ये ओझों का यही काम है, पहले भूत डालते हैं फिर भूत निकालते हैं। भाई कहीं और से तो भूत नहीं आते, यही तो भूत है। तो हम कह रहे थे कि कितने पंडित यहां होंगे लेकिन किसी में इतना हृदय में इतनी शक्ति नहीं है। यहाँ के भारत में भी हमने देखे हैं, अच्छे खासे मंदिर के अंदर जाओ पंडित बैठे हैं, तिलक लगाएंगे दक्षिणा लेंगे लेकिन पैंट पहन के और बुशर्ट पहन के बैठे हैं। अच्छे धर्म स्थानों के ऊपर जहां आप जाओगे वहां ऐसे मिलेंगे पंडित, चोटी रख के धोती रख के तिलक लगाने में शर्म आती है, तो पंडित को हिम्मत नहीं है ये करने की, लेकिन यहां नौजवान बच्चे ये करते हुए आपको दिखते हैं। तो भक्ति साफ दिखती है कि जहां महाप्रभु की कृपा है वहीं भक्ति होना संभव है, नहीं तो प्रयास करके कई जन्म लग जाएंगे तब भी इस रास्ते के ऊपर चलना इतना आसान नहीं। तुम्हारी आपसे विनती है कि ये महाप्रभु का जो आंदोलन है संकीर्तन आंदोलन, भगवान के नाम को प्रेम से गाना, जो हमारे हृदय के अंदर अनादि काल से जमे हुए मैल को धो देंगे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ये भगवान श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन की जय हो अनादि काल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धो के साफ कर देती है। इंग्लैंड में प्रभुपाद जी एक जगह रह रहे थे भक्तों के संग, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस की तरह कोई कई एकड़ों में था, तो वहां जो काम करने वाला एक गार्डनर था, माली था, वो अपने घर में परेशान होता था कि रात को सो नहीं सकता हूं, भूत है। तो उसने भक्तों को कहा कि यहाँ आपके गुरुजी आए हुए हैं, हमारे घर में भूत है, रात को सो नहीं सकते हैं। भक्तों ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी ये कहता है कि इसके घर में भूत है। बोला आप ले जाओ शंख बजाओ और जाके जोर से कीर्तन करो। सब भक्त वहां गए, शंख बजाया है, करताल करताल मृदंग लेंगे, ऐसा कीर्तन किया, रात को वो सोया, दूसरे दिन आया कि आज तो मैं नींद किया, बोला भूत भाग गया, भूत नहीं रहा। तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, भक्तों को बुलाओ, ये करताल मृदंग से कीर्तन करो, शंख बजाओ, भूत भाग जाएगा। भूत क्या, कोई आपके पास शंका हो, कोई आपका संकट होगा, अपने आप भाग जाएगा। भगवान के भक्तों के नाम लेने से, भगवान के भक्तों के नाम लेने से भूत भाग जाता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रुगाते हो के नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच नजदीक भी नहीं आएगा, तो क्या करेगा जब भक्त, हनुमान भक्त है, क्या करेगा जब राम का नाम सुनाएगा तो कोई निकट नहीं आएगा। आपको आराम चाहिए, आराम आराम किसको बोलते हैं, आराम चाहिए, किसी को आराम है, आराम नहीं है, सबको आराम चाहिए। आराम चाहिए तो राम के पास जाओ, आराम, राम को लाओ, आराम है, राम को भगाया तो कोई आराम नहीं दुनिया में। ये सब दुनिया में लोग आराम चाहते हैं लेकिन राम नहीं चाहते हैं, नहीं राम आएगा तो आराम कहाँ से आएगा, हाँ राम नहीं तो राम, सुख को चाहो सदा शरण राम की लो, तो अगर सुख सदा के लिए चाहिए तो राम की शरण लो। राम का मतलब है आनंद, और भक्ति का आचार्य है हनुमान दास के भक्ति का, और हम सबके नाम, हमारे सबके नाम पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग कैसे रखते थे, हाँ पुराने हमारे नाम कैसे रखते थे, हमारे दादा सांबा सांबा क्या रखते थे, पीछे दास लगाते थे सबको, रामदास गोपाल दास कल्याण दास, सबके पीछे दास लगाते थे कि नहीं लगाते थे, वो समझते थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे हमारी तरह, वो बीए एमए ऐसे एमबीए, एमबीए का मतलब मियां बीवी, बस अपनी बीवी और मियां और किसी से कुछ नहीं लेना देना बच्चे मियां बीवी बच्चे, मियां बीवी बच्चों समेत एमबी इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों के नाम टिंकू पिंकू रखते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्ग अनपढ़ थे लेकिन बच्चों के नाम रखते थे रामदास लखन दास, सबका इतना सुंदर नाम गौरी, नाम इतने रखते थे जिनका नाम लेने से कम घर में भगवान के नाम का उच्चारण होता था। तो वो अनपढ़ हमसे अच्छे थे, हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं, इसलिए समझो कि ये जरूरत है, ये शास्त्र समझना हमारी जरूरत है, ये टाइम पास के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन को सीधे रास्ते के ऊपर चलाने के लिए, हमारा जीवन सदमार्ग के ऊपर चले, इसलिए सत्संग हर रोज हर घर में होना चाहिए, कीर्तन हर रोज हर घर में होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, परिवार के साथ बैठ के भोजन करने से पहले भगवान के नाम का कीर्तन करो। अगर आपको सुखी रहना है, अगर आप मानव जन्म की सफलता चाहते हो, तो एक काम निश्चित रूप से करो, रोज अपने घर में कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा से वृंदावन भेजा, तो सुबह सवेरे नहाने के लिए जमुना जाते हुए उद्धव ने हर घर के अंदर दही मंथन होते हुए और गोपियों की कंगनी छलक छन छन कर रही थी, दही चल रहा था और सबके मुख से कृष्ण बलराम के नाम का गान हो रहा था। हर घर के अंदर सुबह सुबह माताएं भगवत कीर्तन करती थी, जब दही बनाती थी तब, झाड़ू निकालती थी तो भी कीर्तन करती थी, कोई भी काम करती थी तो माताजी पहले कीर्तन किया करती थी। घर में सुबह सुबह कीर्तन हुआ, वृंदावन के हर घर में ये कीर्तन हो रहा था। उद्धव ने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर घर में कृष्ण बलराम का कीर्तन हो रहा है, दही का मंथन हो रहा है, मक्खन निकल रहा है, चाहे आटा पीस रही है, चाहे झाड़ू निकाल रही है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण कर रही है। ऐसे हमारी आदत हो जानी चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते मुख से भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो लोग क्या गाते हैं। हाँ बोलो, लोग अपने घरों में गाते तो है ना, कुछ नहाते गाते क्या गाते हैं, चलते फिरते गोली क्या गाते हैं, वो क्या होता है, हाँ कौन सा वाला, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, अब तेरा दिल ही टुकड़े टुकड़े है तो तू कहाँ से घर को बनाएगा, घर को कैसे तुम्हारा ठीक करेगा, ऐसा गीत गाना कोई गाने का है क्या। ऐसे गीत गाने से आदमी घर के अंदर टुकड़े टुकड़े तो पहले ही हुए, और कितने टुकड़े करने, तो घर में कीर्तन करने का नियम बनाओ, निश्चित रूप से कीर्तन रोज सुबह शाम होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, सुबह शाम कीर्तन होना चाहिए, नियम बनाओ। अपना जप करना तो और बात है, लेकिन परिवार के साथ की, सब लोग कहते हैं बच्चे कहना नहीं मानते, क्यों भाई, आप लोग माता जी ये बात कहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानते, सच है कि झूठ है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों में संस्कार अच्छे हों तो बचपन से ही बच्चों को कीर्तन सुनाओ और भगवान का प्रसाद खिलाओ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, संस्कारी बने, अच्छे बने, तो घर के अंदर निश्चित रूप से कीर्तन करो और बच्चों को भगवान का प्रसाद खिलाओ। ये दो केवल दवाइयां हैं जो बच्चों को बुरे रास्ते से जाने से बचा सकती। 10-12 साल के बाद बच्चा नहीं करेगा, उससे पहले ये संस्कार डालोगे तो आगे चल के उसके अंदर उसकी फाउंडेशन अच्छी होगी। फिर भी आप कीर्तन घर में करो और घर में भगवान का प्रसाद अपने परिवार को खिलाओ, तो परिवार के अंदर झगड़ा कम हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, क्योंकि कृष्ण कीर्तन सब जो डिफरेंसेस है वो खत्म कर देता है। अगर हम भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, प्रभुपाद जी कभी कहा करते थे, जब हम साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं, साथ कीर्तन करते हैं, तो हमारे सारे जो डिफरेंसेस हैं, दे आर रिकनसाइल्ड, वो सब समाप्त हो जाते हैं। साथ खाना, साथ प्रसाद खाना और साथ भगवान का नाम लेना, ये हमारे सब जो वैर विरोध है समाप्त कर देगा, घरों को वैकुंठ बना देगा। ये घर घर के अंदर हरि कीर्तन होना चाहिए। जैसे आज क्या माता जी, क्या देवकी, क्या देवकी पुत्री, देवकी पुत्री देवीदासी और कृष्णदास अपने घर में सत्संग जैसे किया, सबके लिए प्रसाद का प्रबंध किया। हम कितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग अंदर बाहर होंगे, हाँ कितने, 50 होंगे। इसका मतलब 2 महीने में एक को बारी आएगी, अगर रोज कीर्तन किया जाए किसी के घर में तो 2 महीने के बाद एक की बारी आएगी। 2 महीने घर में कुछ रात को किसी को पकाना नहीं, 2 महीने सबका पकाना छुट्टी, सब आके कीर्तन करो और प्रसाद खाओ, 2 महीने में सिर्फ एक बार आपको पकाना है। ये कैसा अच्छा प्रोजेक्ट, कैसा अच्छा काम है कि नहीं है, हाँ 2 महीने चूल्हे से छुट्टी मिल जाए, केवल शाम को 7 बजे चलना है, 1 घंटा कीर्तन करना है, 1 घंटा सत्संग सुनना है और प्रसाद खाना है, छुट्टी। कैसा कैसा प्रोग्राम है, अच्छा है कि नहीं है, दो महीने में केवल एक दिन काम और 59 दिन आराम। राम राम, कितना अच्छा काम है। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम 30-1 आदमियों का एक ऐसा अपना ग्रुप होना चाहिए, कम से कम 3 दिन हफ्ते में करो। 30 आदमी 3 दिन हफ्ते में करेंगे तो भी 3 महीने के बाद बारी आएगी, लेकिन घर कीर्तन करो, ये बहुत जरूरी है, यही हमारी सुरक्षा है। सब जगह सब नहीं जा सकते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाओ, उसका नाम ही गौरंग कीर्तन, जो गौरंग कीर्तन मंडल, हमारा काम ही कीर्तन करना है। आपस में कीर्तन करो, साथ में प्रसाद बनाओ, खाओ और कीर्तन करो, और तो बाकी सब लोगों के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। ऐसे घर घर में आप देखेंगे, आप 30 होंगे तो 5 तो नए आएंगे ही आएंगे हर रोज, आस्ते आस्ते ये बढ़ता जाएगा। बस कीर्तन कीर्तन कीर्तन। कलयुग में प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने इस कृष्ण भावना अमृत संघ का प्रचार 2 चीजों से किया। प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए कह रहे थे कि ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में हमने 2 चीजों से किया, एक तो बहुत प्रेम से मधुर कीर्तन किया, एक प्रसाद वितरण किया। कीर्तन और प्रसाद दो ही साधन है जिनसे प्रचार हो सकता है, बाकी चीजें अपने आप होने होता है। ये हम यहाँ क्या है आज, प्रचार कीर्तन और प्रसाद है। प्रसाद और कीर्तन, ये 2 चीजें हर घर में हो जाएंगी तो ये पूरा आपका मॉरिशस आइलैंड बहुत जल्दी सारा कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, और सब लोग सहायता करेंगे एक दूसरे की, तब ये काम हो सकता है। मैं शास्त्र को पढ़ के आपको बताऊं, मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कृ, तो एक घंटा कथा कर सकता हूं, लेकिन आप करेंगे क्या? ये तो आपको करना चाहिए ना, वो तो मैं बता के चला जाऊंगा, आपको क्या लाभ होगा। हर घर में रोज कीर्तन होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई ऐसा जो एक एरिया में रहें, ज्यादा गाड़ियों के अंदर तेल जलाने की जरूरत नहीं है, पड़ोस के लोग जहां हो आसानी से आ सकते हैं, ऐसे कीर्तन रोज करने का कोई न कोई नियम बना। गुरुजी क्या विचार? कलयुग का धर्म यही है, नाम संकीर्तन युग धर्म है। देखो ये भक्त विचारे रोज कहाँ कहाँ जाता है, सांबा है के राम विजय है, रघुनाथ है कि हमारे गुरु है, गुरु शक्ति है, ये रोज कहीं ना कहीं जाके कीर्तन करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ये 4 कितना कर पाएंगे, और 10-12 होंगे, लेकिन आप लोग सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तब पूरा ये काम हो सकता है। हर एक को इसमें भाग लेना चाहिए। तो बेचारे रोज ही जाते हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारा बाल जीवन रोज जाता है, ये श्याम रूप पीतोन इसका घर है, उधर जाके घर घर में वो जन्माष्टमी का प्रचार कर रहा है। तो एक आदमी है पूरे उस एरिया में प्रचार करने का प्रयास कर रहा है। गत वर्ष भी 3-3 दिन का प्रोग्राम था, अब भी 3 दिन का प्रोग्राम है, तो बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन एक आदमी कर रहा है, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर करेंगे तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। प्रभुपाद जी प्रवचन करते हुए एक दिन हिंदी में बोल रहे थे, मैं एक बड़ी अवस्था का बुजुर्ग आदमी 70 साल के बाद प्रचार करने के लिए गया, पूरी दुनिया ने कृष्ण भावना को स्वीकार किया, और भारत में प्रवचन करते हुए कहते हैं एक भारत का छोटा टुकड़ा टूट के पाकिस्तान बन गया, आप सब लोग रो रहे हो, अगर 5-6 और नौजवान प्रचार करने के लिए निकलो तो हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। प्रभुपाद ने ऐसा प्रवचन में शब्द कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे, कि अगर 5-6 और तो आप 5-25 और ये कीर्तन करने के लिए निकल जाओगे तो कम से कम मॉरिशस को कृष्ण भावना भावित तो बनाया जा सकता है। और विशेष रूप से आप में जो छोटी उम्र के हैं उनको प्रयास करके ये प्रचार का काम करना चाहिए। बड़ी माताओं को सिर्फ प्रसाद बनाने की सेवा देनी चाहिए, लेकिन जो छोटे हैं उनको अभी प्रयास करके, क्यों हाथ चलते हैं पांव चलते हैं शक्ति है तो प्रचार करना चाहिए। जो छोटी उम्र के हैं उनको प्रचार करना चाहिए, उनकी आवश्यकता ज्यादा है प्रचार में। हरे कृष्णा, क्या विचार है आपका? नेक्स्ट कब कहां प्रोग्राम करोगे कीर्तन का? कल कहां कीर्तन करोगे? हरे कृष्णा, अपने घर में तो करना। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को कीर्तन करके देखो, आपके घर के अंदर आप परिवर्तन देखोगे, चेंज देखोगे। ये एक बहुत सिंपल फार्मूला आप अपना के देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। ये भगवद गीता में दो जगह पे आया है। भगवद गीता के आधे में पूरा आधा जहाँ नवा अध्याय होता है उसका अंतिम श्लोक भवमत भक्तो है, और फिर 18वें अध्याय में भी भगवान ने मुख्य गुह्यतम ज्ञान देते हुए कहा है कि मेरे भक्त बनो। तो भक्ति करना जीव का धर्म है, और भक्ति का अर्थ होता है परम प्रेम, भगवान से प्रेम करना, और प्रेम करने वाला सबसे प्रेम, भगवान से प्रेम करने वाला सबसे प्रेम करता है। तो भगवान से प्रेम करने के लिए सरल साधन है, अपने घर में कीर्तन शुरू करो और अपने घर में प्रसाद परिवार को खिलाओ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरे सत्संग में हमने आपसे कहा कि कृष्ण प्रेम केवल चैतन्य महाप्रभु दे सकता है, और वही कलयुग में स्पेशल विशेष कीर्तन के प्रचार के आचार्य बन के आए हैं, और कीर्तन का प्रवर्तक है यही युग धर्म के लिए। जो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया और किया, वो कीर्तन करने से हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम आएगा। ये सारे मेरे प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु के मार्ग के ऊपर कीर्तन करना ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। नहीं तो कई हजारों सालों से कितने लोग कर रहे हैं, हमने आपको उदाहरण देके बताया, उनके चरित्र में ही परिवर्तन नहीं आया है, तो फिर उनके जीवन में भक्ति कहाँ से आएगी? तो महाप्रभु के मार्ग का कीर्तन, भगवान हरि के नाम का कीर्तन। महाप्रभु ने ये भी कीर्तन किया है, राम राघव रक्षाम, कृष्ण केशव पाई माम। महाप्रभु ने मास्टर दक्षिण भारत में दोनों नामों का कीर्तन किया है, खुद गाते हुए जहाँ जाते हैं हरि बोल करते हैं, कृष्ण मतिरस्तु कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। तो जो भी शास्त्र में प्रमाणित कीर्तन हो जो, उसको करना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन जो हम कर रहे हैं, ये तो वेदों में कलिसंत्र ने उपनिषद में वर्णित है, और ये ब्रह्मा जी ने नारद को शिक्षा देके कलयुग के लोगों के लिए विशेष लाभदायक बताया है। तो ये शास्त्र का है कीर्तन कृष्णस्य। ये सुखदेव जी भागवत में कहते हैं परीक्षित महाराज को, कृष्ण का कीर्तन मुक्त संग परम वर्जित, कलयुग के लोगों का उद्धार कृष्ण कीर्तन से होगा। नारद जी ये कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं, व्यास देव जी ये कह रहे हैं भागवत में, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण युगल रूप में इसी कीर्तन को पूरे भारत में प्रचारित किया और आदेश दिया कि पूरे विश्व में ये कीर्तन गाया जाए। इस कीर्तन से हृदय में परिवर्तन आएगा, ये कीर्तन। बाकी कीर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। करो, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपके जीवन में चेंज चाहिए तो ये कीर्तन चेंज करता है, जिसका प्रमाण एक नहीं हजारों है। और कोई प्रश्न? आपका प्रश्न है कोई? कृष्णदास जबू जी, ये तो भारतवासियों को यहाँ देखते हैं तो इतने उत्साह नहीं है। अब तो हम यहाँ आने से पहले रशिया में एक महीना थे और वो तो कोई हिंदुस्तानी नहीं है वहाँ, न कोई ऐसा हमारे जैसा भारतीय चेहरा है। लेकिन वो लोग जिस उत्साह के साथ सज धज के प्रेम से कृष्ण प्रेम में गली गली में गाते हैं कीर्तन और उत्साह के साथ जो प्रचार कर रहे हैं वो बड़ा अद्भुत है, देखने जैसा है। हम तो कुछ मेरे पास होंगे, मैं कभी किसी दिन दिखाऊंगा आपको कि वो लोग कितना सुंदर जो है माताएं कीर्तन कर रहे हैं कि प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं। पर 5-6 हजार आदमी, 800 हजार आदमी संडे को मास्को में सत्संग में आते हैं और 800 हजार के हजार ही उधर के लोकल रशियन है, हिंदुस्तानी तो 2-3 भी नहीं थे उसमें। इतने लोग तो उधर संडे के केवल प्रोग्राम में आते हैं। 200-300 लोग तो हर जगह जहां मैं गया वहां सत्संग में आते हैं और बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, शास्त्र को सुनते हैं, घंटों शास्त्र को सुनते थे रोज और बड़े उत्साह के साथ सुनते थे। उनको देखकर हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का अपना ये धरोहर है, धन है, इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा होगा क्या? हम उनकी तरह पाश्चात्य देशों वाली के जैसे कपड़े पहनते और ऐसा खाना पीना कर रहे हैं और वो साधु बन के वृंदावन में रह रहे हैं धोती पहन के और हम उनका पेंट पहन के उन जैसे बनने का प्रयास कर, तो उल्टी गंगा बह रही। हमको अपने वेश के ऊपर, अपने अपने कीर्तन के ऊपर, अपने तिलक के ऊपर हमारे को गौरव होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर कल्चर। हमको बड़ा उत्साह होना चाहिए कि हमारा ये सनातन हमारा ये वैदिक कल्चर है और इसके बराबर दुनिया में कहीं अनुभव मिलना मुश्किल है। ये विज्ञान है, पूरे विश्व के अंदर हर जगह इसको लोग अपना रहे हैं और ऐसे हो सकता है कि भविष्य में हम जो वैदिक संस्कृति में जन्म लिया है वो ही आउटकास्ट हो जाएंगे। जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं कि तुम राम राम करते हो कि नहीं करते हो, वो इतने बढ़ रहे हैं। इसलिए हमको सावधानी से अपने धर्म को अच्छी तरह से, जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है, भक्ति का मार्ग है, उसको अपना लेना चाहिए। तो हमारा अपना अनुभव है, हमने जब पाश्चात्य देश के लोगों को गीता का प्रवचन करते हुए देखा, उनका धोती चोटी तिलक को देखा तो हमको शर्म आया कि ये हमारे पिता दादा मामा करते थे और हमने इसको छोड़ दिया है और हम अंग्रेज जैसा अपने आप को उस पेंट में टाई में बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये वापस धोती पहन के और गीता भागवत पढ़ रहे हैं। हमको शर्म आना चाहिए, ये काम हमको करना था, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? और प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय वहां धंधा कर रहे थे, दुकान चला रहे थे, उनको कहा ये काम आपको करना था प्रचार का, आप नहीं कर रहे हो, देखो ये इस देश के लोग कर रहे हैं, कम से कम आप इनकी सहायता तो करो, तुम यहां बैठे हो इनकी सहायता करो और ये लोग प्रचार कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए था, ये आपका काम था, आप तो यहां पैसा कमा रहे हो और ये प्रचार कर रहे, आपको इनकी सहायता करनी चाहिए। तो असल में पूरे विश्व के अंदर ये चेतना महाप्रभु का आंदोलन तो दुनिया के कोने कोने के अंदर है और चाइना के अंदर भी भगवद गीता चाइना में छपने के लिए उन्होंने अनुमति दे दी है और चाइना में भगवद गीता छपी हुई है। तो कोई दूसरी दुनिया का, रशिया जो किसी वक्त में कम्युनिस्ट सबसे ज्यादा भक्त इस वक्त रशिया में और बहुत अच्छे ऐसा शुद्ध वैष्णव भोजन बना के और नाम क्या, आलू का नाम गोरंगा डिश, वो उनके नाम भी भगवान के नाम से बहुत सुंदर प्रसाद भगवान को अर्पण करते हैं। तो हमारे को तो ये करना चाहिए, हम छोड़ के बहुत न इधर के, हम वेस्टर्न तो हो नहीं सकते हैं और अपना जो कल्चर वो छोड़ देंगे, बीच में लटकते न इधर के न उधर के रह रहे हैं, हमारा तो ये हाल है, वेस्टर्न तो हो नहीं सकते हैं, हम वैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम अपना संस्कार भी छोड़ेंगे तो कहीं के भी नहीं रहते, इसलिए हमको अपने संस्कारों को अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, आरती करो।